भो मित्रगणाः, एकवारं पुनरपि स्वागतं व्याहरामि। कौशलं न्यासस्य कृते तथा रेडियो मधुवनस्य श्रव्यमञ्चे भवन्तः शृण्वन्तु पठामि संस्कृतं कार्यक्रमस्य अद्यतन प्रस्तुति। अद्य अहं भवन्तः प्रति संस्कृत पाठ्यपुस्तकस्य चतुर्थभागस्य एका कथा निवेदनं करोमि, शृण्वन्तु। अर्थात् हे मित्रगण, फिर से एक बार आप सबों का स्वागत है और कौशलम न्यास के लिए तथा रेडियो मधुबन के श्राव्य मंच से मैं पुनः आपके लिए आज का पठामि संस्कृतम कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हूँ। और संस्कृत के चतुर्थ भाग के पाठ्य पुस्तक से आज मैं एक कहानी सुना रही हूँ, निवेदन कर रही हूँ। और चतुर्थ भाग अर्थात ये थोड़े से ऊंची कक्षा के बच्चों के लिए है। कथायां शीर्षकः अस्ति बुद्धिमान कुलीरकः। कथा का शीर्षक है बुद्धिमान खेकड़ा। तो खेकड़े की क्या बुद्धिमानी है इसे देखते हैं। अस्ति कस्मिंश्चित वनोद्देशे बहुबकसनाथो वटपादपः। अब इस पाठ में कुछ बहुत सुंदर प्रयोग किए गए हैं जिसे हम शब्द लालित्य या भाषा लालित्य कह सकते हैं। तो अस्ति कस्मिंश्चित वनोद्देशे अर्थात किसी एक वन प्रदेश में अस्ति अर्थात है बहुबक सनाथः। अब इसका क्या अर्थ हुआ? तो बहुत सारे बकों से बगुलों से जो सनाथ हुआ ऐसा वटपादपः, ऐसा एक वटवृक्ष अर्थात बहुत सारे बगुलों को आश्रय देने वाला एक वटवृक्ष उस वन में था। अब यहाँ बहुत मजे की बात कही है बहुबक सनाथः। तो अनाथ हम किसको कहते हैं? तो जिसका कोई नहीं है। और सनाथ हम किसको कहेंगे? तो जिसके बहुत लोग हैं, जिसके प्रति अनुराग रखने वाले बहुत लोग हैं। तो यहाँ वटवृक्ष भी सनाथ हो गया। क्यों? क्योंकि उस पर बहुत सारे बगुले आकर के निवास करते हैं। तो बगुलों को वटवृक्ष के कारण आश्रय मिलता है, घर मिलता है। लेकिन यहाँ लेखक ने बहुबक सनाथ शब्द का प्रयोग करके एक उल्टी बात भी दिखा दी, एक उसका दूसरा पहलू भी दिखा दिया कि वृक्ष भी उन बकों के कारण सनाथ हो गया है। तो जो मैंने भाषा लालित्य की बात कही वह यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तस्य कोटरे कृष्ण सर्पः प्रतिवसति स्म। उसके कोटर में वट वृक्ष की एक ढोल में एक कृष्ण सर्प अर्थात काला सांप जो कि अधिक भयंकर होता है वह रहता था। सच बक बालकान अजात पक्षानपि सदैव भक्षयन कालम नयति। वह सांप बक बालकों को अर्थात बगुले के चूजों को और अजात पक्षान अपि और जो अभी अजात हैं अर्थात जिनका अभी जन्म नहीं हुआ है अर्थात जो अभी अंडे से बाहर नहीं निकले हैं उन अंडों को भी वह सदैव हमेशा भक्षयन कालम नयति। उनका भक्षण करके उन्हें उनके काल तक यानी उनकी मृत्यु तक ले जाता था। तो छोटी सी बात है कि कृष्ण सर्प चूजों को खा जाता था। इसे बहुत सरल तरीके से भी कहा जा सकता है कि कृष्ण सर्पः बक बालकान भक्षयति स्म, कि कृष्ण सर्प बगुले के चूजों को खा जाता था। लेकिन यहाँ फिर से एक भाषा लालित्य दिखाया है कि भक्षयन कालम नयति, उनका भक्षण करके उन्हें काल तक उनके मृत्यु तक पहुंचा देता था। तो ये भी एक लालित्य की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अथैको बकस्तेन भक्षितान अपत्यानि दृष्ट्वा शिशु वैराग्यात् सरस्तीरमासाद्य बाष्पपूरित नयनः अधोमुखस्तिष्ठति। तो कोई एक बगुला अथैको बकः अर्थात कोई एक बगुला तेन भक्षितान अपत्यानि दृष्ट्वा उस कृष्ण सर्प के द्वारा खाए गए चूजों को देखकर, भक्षितान अपत्यानि दृष्ट्वा खाए गए चूजों को देखकर, शिशु वैराग्यात बच्चों के नहीं रहने से जिसे वैराग्य हो गया है, वितृष्णा हो गई है, ऐसा वह बगुला सरस तीरम आसाद्य तालाब के किनारे आकर के बाष्प पूरित नयनः और आंखों में पानी भर के। अब यहाँ भी हम हिंदी में कहते हैं आंखों में पानी भर आया, लेकिन इसे लालित्य की दृष्टि से कहा जाता है आंखों में भाप भराई, बाष्प पूरित। क्योंकि जब हम किसी बात के कारण हम दुखी हो जाते हैं, भावना वेग में आ जाते हैं, तो सबसे पहले हमारे अंदर से कुछ गर्म हवा निकलती है जो आंखों के रास्ते अश्रु के रूप में बाहर आती है। तो शरीर शास्त्र की दृष्टि से यह वर्णन बिल्कुल सही है कि आंखें बाष्प पूरित हो गईं, उन्हें अश्रु पूरित हो गई भी कहा जा सकता है, जैसा हम हिंदी में कहते हैं। लेकिन बाष्प पूरित आंखें, यह भी आंखों का एक अच्छा वर्णन यहाँ किया गया है। अधोमुख स्तिष्ठति, और अधोमुख अर्थात गर्दन नीची करके वह तिष्ठति खड़ा हो जाता है। तम च तादृक चेष्टितम अवलोक्य कुलीरकः प्रोवाच माम किमेवम रुद्यते भवताद्य। तो उसे उस अवस्था में देख करके, अवलोक्य अर्थात देख करके, कुलीरकः प्रोवाच अर्थात एक खेकड़ा वहां था, वह उसके पास आकर के कहता है माम अर्थात हे मामा, किमेवम रुद्यते भवताद्य, तुम इस प्रकार क्यों रो रहे हो। यहाँ फिर बहुत सुंदर बात कह दी कि खेकड़ा जो है वह बगुले को मामा कह रहा है। वैसे तुम्हें पता है कि बगुले तालाब के किनारे जाकर के खेकड़ों को भी खा जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वह खेकड़ा बगुले को मामा कह रहा है और पूछ रहा है तुम इस प्रकार क्यों रो रहे हो। स आह भद्र किम करोमि, तो आह अर्थात कहता है, तो बगुला कहता है भद्र किम करोमि, हे भद्र हे मित्र, किम करोमि क्या करूं। तो यहाँ भद्र यह शब्द किसी को संबोधित करने के लिए एक अच्छा शब्द संस्कृत में प्रयोग होता है। और बगुला आगे कहता है मम मंद भाग्यस्य बालकाः कोटर निवासिना सर्पेण भक्षिताः। मुझ मंद भाग्य के बच्चों को कोटर में रहने वाला जो सांप है उसने खा लिया है। यहाँ कर्मणि प्रयोग हुआ है मम बालकाः सर्पेण भक्षिताः अर्थात मेरे बच्चे सांप के द्वारा खाए गए। तद दुख दुखितो हम रोदिमि, उनके दुख से दुखी होकर के मैं रो रहा हूँ। तत कथय मे यद्यस्ति कश्चिद उपायस ताद विनाशाय, तो मैं अर्थात मुझसे मेरे प्रति मुझको कहो, कथय कहो, यदि अस्ति कश्चिद उपायः ताद विनाशाय, यदि अस्ति यदि है कश्चिद उपायः कोई उपाय ताद विनाशाय उसका विनाश करने के लिए अर्थात सांप का विनाश करने के लिए कोई उपाय है तो मुझे बताओ। तदा कर्ण्य कुलीरकश्चिन्तयामास, इस बात को सुन करके वह खेकड़ा जो है वह अपने मन में सोचता है अयम तावत अस्मत जाति सहज वैरी, यह बगुला तो मेरी जाति का सहज वैरी है। तथोपदेशम प्रयच्छामि सत्यानृतम यथान्येपि बकाः सर्वे संक्षयम आयान्ति, तो इसे मैं कुछ उपदेश करता हूँ। उपदेशम प्रयच्छामि सत्यानृतम, जो थोड़ा सच और थोड़ा झूठ है, यथा अन्येपि बकाः जिसके कारण बाकी बगुले भी सर्वे अर्थात सभी बगुले संक्षयम आयान्ति विनष्टता को प्राप्त होंगे अर्थात सभी बगुलों का विनाश होगा। उक्तंच पहले भी कहा गया है नवनीत समाम वाणीम कृत्वा चित्तम तु निर्दयम तथा प्रबोध्यते शत्रुः सान्वयो म्रियते यथा। पहले भी बड़े बूढ़ों के द्वारा यह कहा गया है कि नवनीत समाम वाणीम, नवनीत अर्थात मक्खन, तो मक्खन के समान मुलायम वाणी रखो। चित्तम तु निर्दयम, परंतु चित्त में बिल्कुल गहरी निर्दयता रख करके। तथा प्रबोध्यते शत्रुः, इस प्रकार से शत्रु का प्रबोधन किया जाता है। सान्वयो म्रियते यथा अर्थात सान्वयो अपने पूरे वंश के साथ म्रियते मर जाए नष्ट हो जाए, तो शत्रु को इस प्रकार से प्रबोधन दो कि पूरे वंश के साथ ही वह नष्ट हो जाए। तो इस प्रकार मन में बहुत गहरी चाल सोच करके वह खेकड़ा क्या कहता है, आहच कहता है माम यदि एवं तन्मत्स्य मांस खंडानि नकुलस्य बिलद्वारात् सर्पकोटरं यावत् प्रक्षिप यथा नकुलस्तन्मार्गेण गत्वा तं दुष्टसर्पं विनाशयति। मम यदि तुम मत्स्य अर्थात मछली और मांस के खंडों को नकुल के द्वार से सर्पकोटर तक बिखेर दो तो नकुलः तेन मार्गेण गत्वा नकुल उस रास्ते से चल करके आएगा और दुष्ट सर्पम विनाशयति और उस दुष्ट सर्प का वह विनाश कर देगा। अथ तथानुष्ठिते मत्स्य मांसानुसारिणा नकुलेन तम कृष्ण सर्पम निहत्य तेपि तद्वृक्षाश्रयाः सर्वे बकाश्च शनैः शनैर्भक्षिताः। तो क्या हुआ कि उसी प्रकार बगुले ने सब कुछ किया तो उस मत्स्य और मांस के खंडों का अनुसरण करते हुए नेवला उस काले सांप के कोटर तक पहुंच गया और उसे निहत्य उसकी हत्या करके तेपि तद्वृक्षाश्रयाः सर्वे बकाश्च शनैः शनैर्भक्षिताः। उसके बाद उसने उस वृक्ष के ऊपर आश्रय किए हुए सभी बगुलों को शनैः शनैः धीरे धीरे एक एक करके भक्षिताः खा लिया। अतएव उच्यते इसीलिए कहा गया है उपायं चिंतयेत् प्राज्ञस् तथा पायं च चिंतयेत् पश्यतो बकमूर्खस्य नकुलेन हता बकाः। कि उपायं चिंतयेत् प्राज्ञः बुद्धिमान व्यक्ति उपाय की बात सोचे तथा पायं च चिंतयेत् लेकिन उसी के साथ साथ अपाय क्या होने वाला है इसको भी सोचे। पश्यतो वरना देखो कि बकमूर्खस्य नकुलेन हता बकाः वरना देखो कि बगुले की मूर्खता के कारण उस नेवले के द्वारा सारे के सारे ही बगुलों का नाश हो गया। तो मित्रों कैसी लगी यह कहानी? चलते चलते यह बता दूं कि यह कहानी हमने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद अर्थात NCERT के संस्कृत पाठ्य पुस्तकों की जो मालिका है उसके चतुर्थ भाग से लिया है जिसका संपादन डॉ. कमलाकांत मिश्र तथा श्रीमती उर्मिल खुंगर ने मिल करके किया था। तो इन सबों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन करते हुए हम आज का कार्यक्रम समाप्त करेंगे। तुम सुनते रहो रेडियो मधुबन, पढ़ते रहो संस्कृत, मुस्कुराते रहो। नमस्कार।